थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से हग्गै नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग अपने घरों को बना रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं और परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर को उजाड़ छोड़ दिया है। और तब परमेश्वर का दास उनके पास वचन लेकर के आता है। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है कि हम अलग अलग स्थानों पर बैठ करके भी आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर एक साथ बैठ करके कर सकते हैं। प्रभु जी, जब हम आपके वचन को आज रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि वे जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोले और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हर एक कमी घटी और त्रुटियों से उन्हें बचाने पाए। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा हमारे श्रोता भाई बहन आत्मिक लाभ उठा सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें भी चंगाई और छुटकारा दीजिए, शांति और आनंद दीजिए, ताकि वे आप पर विश्वास लाने पाएं। धन्यवाद प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि हगै ने स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों से कहा था कि वे परेशानी में इसलिए हैं कि उन्होंने अपने घर तो बना लिए परंतु परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है, अतः वे परमेश्वर के भवन का निर्माण करें तो परमेश्वर उनकी परेशानियों को दूर करेगा। परंतु मंदिर निर्माण का काम आरंभ करने के बाद वे प्रतिफल की आशा करने लगे और शिकायत भी करने लगे कि परमेश्वर उन्हें समृद्धि का समय नहीं दे रहा है। अतः परमेश्वर ने दो प्रश्न उनसे पूछे जिसे हगै को पूछने के लिए भेजा। पवित्र वस्तु किसी को स्पर्श से पवित्र नहीं बनाती है, परंतु अशुद्ध वस्तु के स्पर्श से पवित्र भी अशुद्ध हो जाता है। मेरे मित्रों, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक घटना जो हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की योजना के द्वारा ही होता है और यह सब उसके उद्देश्य में हमें देखना है। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे व्यवस्था की पुकार। हगै नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2:10 में, दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। यह परमेश्वर का 4था संदेश है। यहां भी वह तिथि देता है जो दारा राजा के युग की है, दिसंबर 24, 520 ईस्वी पूर्व। उनके कैलेंडर के अनुसार यह 9वां महीना है। इससे पूर्व उसका संदेश 7वें महीने में था, अर्थात हमारे 9वें महीने में। आगे वह कहता है हगै 2 अध्याय उसके 11-13 पद में, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाखमधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हगै ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हां, अशुद्ध ठहरेगी। मेरे मित्रों, दिसंबर 24, 520 ईस्वी पूर्व में हगै याजकों के पास जा करके 2 प्रश्न पूछता है। पहला, पवित्र वस्तु का स्पर्श पाकर क्या अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाती है? उत्तर था कदापि नहीं। दूसरा, क्या अशुद्ध वस्तु के स्पर्श से कोई पवित्र वस्तु अशुद्ध हो जाती है? उत्तर है हाँ, वह अशुद्ध हो जाती है। ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें इस संदर्भ में पृष्ठभूमि समझना ही होगा। इसराइल के दैनिक जीवन के अनेक पक्ष ऐसे थे जिनके विषय में मूसा की व्यवस्था में निर्देश नहीं थे। उनके दैनिक जीवन में ऐसी अनेक विषम परिस्थितियां थी जिनके बारे में मूसा की व्यवस्था में स्पष्टीकरण नहीं था। अतः इसराइल कैसे व्यवहार करता? ऐसी एक विषम परिस्थिति गिनती की पुस्तक अध्याय 27 में है। मूसा की व्यवस्था में विरासत पुत्रों को जाती थी, परंतु यदि किसी के पास एक भी पुत्र न हो और केवल पुत्रियां हो तो क्या किया जाए? सलोफाद नामक एक पुरुष की 5 पुत्रियां थी। पिता के मरने के बाद वे मूसा के पास आकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया है और व्यवस्था के अनुसार उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जानी है, परंतु हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी संपत्ति हमें मिलना चाहिए। मूसा महिला मोर्चे में विश्वास नहीं करता था, अतः उसने परमेश्वर से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने उन लड़कियों के पक्ष में निर्णय दिया कि उसकी पुत्रियों को कुटुंब के बराबर का भाग मिलना चाहिए। मेरे मित्रों, इस प्रकार जब मूसा की व्यवस्था किसी विषय में चुप थी, तब वह विषय याजकों के पास लाया जाता था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 से 11 पद में लिखा है, यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर चुन लेगा लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना और जो व्यवस्था वे तुझे दें उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने या बाएं न मुड़ना। जहां व्यवस्था में स्पष्टीकरण नहीं था, वहां याजक का निर्णय पत्थर की लकीर होता था। यह परमेश्वर की ओर से एक प्रबंध था और मेरे विचार में आज भी प्रचलित है। नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक वे नियम जो विधान में पारित होकर बनते हैं, कुछ न्यायिक निर्णय नियम स्वरूप माने जाते हैं। ये नियम विधान द्वारा पारित नहीं किए गए, परंतु कभी किसी न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं लिया और आगे चलकर वैसा ही मुद्दा या समस्या खड़ा हुआ, तो न्यायालय उस पूर्वकालीन निर्णय के आधार पर अपना निर्णय दे देता है। मेरे प्रियो, इसराइल के लिए परमेश्वर की यह अतिरिक्त व्यवस्था थी। यद्यपि मूसा की व्यवस्था में महान सिद्धांत दिए गए थे, विभिन्न विषयों पर विशिष्ट एवं स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया। याजकों के लिए अति आवश्यक था कि वे पुराने नियम को पूर्ण रीति से जाने, उसे पढ़ें। यदि कोई मुद्दा ऐसा हो कि व्यवस्था में उसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो वह समस्या याजक के पास लाई जाए कि वह अपना निर्णय सुनाए। याजक परमेश्वर के वचन के आधार पर व्यवस्था की व्याख्या को करेगा। तो हम आगे देखते हैं सिद्धांत की व्याख्या। हगै नबी के पुस्तक के अध्ययन में एक बात का ध्यान रखना है कि यह बेबीलोन की बंधुआई का उत्तरकालीन समय है। परमेश्वर की प्रजा बेबीलोन में 70 वर्ष बंधुआई में रह चुकी है और अब अपने देश अर्थात स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों की संख्या में बहुत कमी आई है। जिस जोश के साथ वे स्वदेश लौटे थे वह अब ठंडा पड़ने लगा है। अतः परमेश्वर ने उनके प्रोत्साहन के लिए 3 भविष्यद्वक्ता खड़े किए थे, क्योंकि हगै एक व्यवहारिक मनुष्य था। परमेश्वर ने उसे याजकों के पास 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए भेजा। ये दोनों प्रश्न मूसा की व्यवस्था में नहीं थे। इसराइली जब स्वदेश लौटे थे तब उनमें इसराइल देश के पुनः निर्माण का बहुत जोश था, परंतु 15 वर्ष तक यरूशलेम के मलबे को देख और बैरियों के विरोध के कारण वे मंदिर का पुनः निर्माण नहीं कर पाए थे। वे संघ भावना से विरक्त निश्चिंत बैठ गए थे और मन को समझाने के लिए कहते थे परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है। उनकी इसी मनोदशा में हगै ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्होंने अंततः मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया। परंतु कुछ वृद्ध जन जिन्होंने अपने बाल्यकाल में सुलेमान द्वारा बनाए हुए मंदिर को देखा था, इस मंदिर को देखकर वे रोने लगे, क्योंकि यह मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाए हुए मंदिर की तुलना में कुछ भी नहीं था। उन्होंने 3 महीने मंदिर निर्माण का कार्य किया, परंतु उनमें प्रतिफल पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई और वे कहने लगे, तू कहता था कि हम मंदिर का निर्माण करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमने आज्ञा मानी, परंतु परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दी। मेरे प्रियो, समय के इस मोड़ पर परमेश्वर ने हगै को याजकों के पास भेजा कि वह उनसे 2 प्रश्न पूछे। क्या पवित्रता के संपर्क से संक्रमित होती है? नहीं। अशुद्ध वस्तु को स्पर्श करके पवित्र वस्तु उसे पवित्र नहीं बना सकती है। पवित्रता असंक्रामण अवस्था है। क्या अशुद्धता के संपर्क से आती है? हाँ, अशुद्धता संपर्क से आती है। पवित्र और अशुद्ध के संपर्क में आने से पवित्रता अशुद्ध हो जाती है। गंदा पानी स्वच्छ पानी को गंदा कर देता है। इसी प्रकार बुरा मन अच्छे काम नहीं करेगा। धार्मिक क्षेत्र में अनुष्ठानों द्वारा पापी का शोधन नहीं हो सकता है। मेरे मित्रों, इसराइल में परमेश्वर के इस सिद्धांत को लागू होते देखने के लिए हमें पद 17 देखना आवश्यक है। कहता है, मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गिरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है कि स्वदेश लौटने पर उन्होंने धार्मिक संस्कारों की पूर्ति तो की और बलि भी चढ़ाई, परंतु वे मन से परमेश्वर की ओर नहीं फिरे थे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें आशीष नहीं दी थी। मेरे प्रियो, धर्म पवित्रता का अंजन नहीं है। मुझे आप गलत ना समझें, परंतु बपतिस्मा आपको पवित्रता प्रदान नहीं करेगा, जबकि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। बपतिस्मा लेकर मन परिवर्तन नहीं होता है। आपको अपने पापों के पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु के पास आना होगा, उससे माफी मांगना होगा, ताकि आप अपने जीवन में क्षमा को प्राप्त कर सकें। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, अशुद्ध मनुष्य किसी को स्पर्श करे तो क्या वह भी अशुद्ध हो जाएगा? याचकों ने उत्तर दिया, हाँ। इस संदर्भ में लय व्यवस्था की पुस्तक 22 अध्याय उसके 4-6 पद में, जो मुख्य भूमिका निभाता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अशुद्धता अपवित्र संक्रामक है। मेरे प्रियो, बुरा मन अच्छाई उत्पन्न नहीं करता है। कड़वा सोता मीठा जल नहीं दे सकता है। दाख कटीली झाड़ी में नहीं उगते। अंजीर कांटों की पैदावार नहीं है। दर्शन शास्त्र के एक व्यक्ति ने कहा है, जो एक दर्शन शास्त्र का शब्द है, निगमन मूलक तर्क, अर्थात एक प्रधान वाक्य, एक अप्रधान वाक्य और फिर उनसे निकलने वाला निष्कर्ष। यहां प्रधान वाक्य है पवित्रता असंक्रामक है, अप्रधान वाक्य है अशुद्धता संक्रामक है, और निष्कर्ष यह है कि पवित्र और अपवित्र का संपर्क दोनों ही को अपवित्र बनाता है। प्रभु यीशु ने एक प्रश्न पूछा जिसे हम मत्तयरचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 16 पद में पाते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मनुष्य जैसा है वैसे ही उसके विचार होते हैं। कहा गया है, चोर चोर मौसेरे भाई, जो जैसा है वैसा ही दोस्त ढूंढता है। मेरे प्रियो, धार्मिक संस्कार से मन परिवर्तन नहीं होता है। यदि मन बुरा है तो अच्छा काम भी अपयश कमाता है, यह एक सर्वाधिक सत्य है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक चेचक के रोगी बालक को, मैं एक स्वस्थ बालक के साथ रगड़ता हूं या साथ में रखता हूं तो क्या वह रोगी बालक स्वस्थ हो जाएगा? जी नहीं, इसके विपरीत स्वस्थ बालक भी रोगी हो जाएगा। यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में रोग को प्राप्त कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आप बुरे की संगति में रहकर बुरे बन जाते हैं। आप बुरी संगति में रहकर बुराई से बच नहीं सकते, न ही आप बुराई को दूर कर सकते हैं। मिट्टी में खेलने पर आप मैले तो होंगे ही। किसी ने कहा है कि यदि आप मछली पकड़ने के लिए गए हैं तो आपको कीचड़ तो लगना ही है। मेरे प्रियो, जहां भी हैं जैसे भी हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपने मन के मैल को हटा नहीं सकते हैं। कुछ धर्मों में अनुष्ठान पूर्ति से मोक्ष प्राप्त की बातें होती है, आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि बपतिस्मा हो या अन्य कोई संस्कार, मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें पूरी नहीं कर सकता है। मनुष्य की दुर्दशा हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में देखते हैं। लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? जी हाँ, यह मनुष्य के मन का कैसा चित्रण है। यदि हम अपने आप को वैसा ही देख पाएं जैसा परमेश्वर हमें देखता है, तो हम अपने आप से घृणा करने लगेंगे। हमें अपनी दुर्दशा का बोध नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18-20 पद में प्रभु यीशु इस तथ्य को स्पष्ट करता है। लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, और ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मेरे मित्रों, आप हाथ धोना परमेश्वर के साथ आपका मेल नहीं करवाता है। आप ये सोचते होंगे कि मैं हाथ पैर धो लिया तो मेरा मेल परमेश्वर के साथ हो गया, यह आपका सोच है, परंतु गलत है, क्योंकि हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा उद्धार की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यह मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने मैल को नहीं धो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का लहू हमारे इस मन के मैल को धो सकता है, क्योंकि उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले लिया और वह क्रूस पर चढ़ गया और हमारे बदले में वह बलि हो गया। उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर में लेकर के उस मृत्यु को सह लिया। मेरे मित्रों, उसके पवित्र लहू के द्वारा ही आपके मन के विचारों की गंदगी को आप धो सकते हैं, और इसके लिए आपको यीशु के पास आना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में यीशु के नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, सिर्फ यीशु ही हम सारे मानव जाति के पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मरा, और सिर्फ वह मरा ही नहीं, मृतकों में से वह जी उठा और 40 दिन अपने शिष्यों के मध्य में रहते हुए वह स्वर्ग पर चला गया। आज वह भी जीवित है और वह सक्षम है कि हमारे पापों को क्षमा करे। क्या आज आप अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ यीशु को पुकारें, उसके पास आएं और कहें, प्रभु मैं पापी हूं, आप मुझे क्षमा करें। निश्चय जाने कि वह आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुझसे दूर जाते हो क्यों